इसके ब्रजराज को जिसने कृष्ण के महिमा का स्मरण हुआ, बाबा को भाव भजनी कह रहे हैं कि भैया हमारे यहां पर ऐसा मालूम होता है कि रामकृष्ण किसी देवता ने ही जन्म लिया है। बस इतनी सी बात को पकड़ करके उद्धव जी ने मुझे विचार किया, इसी को बड़ा अच्छा मुझे सहारा मिल गया। श्री उद्धव जी ने कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन प्रारंभ कर दिया, विचार किया ऐश्वर्य ज्ञान ऐश्वर्य वर्णन के द्वारा ही नंद बाबा के विरह को मैं शमित कर दूंगा, शांत कर दूंगा। तो श्री कृष्ण के ब्रह्मस्वरूप पाठा, श्री कृष्ण की अंतर्यामी स्वरूपता का, कृष्ण की भगवत स्वरूपता का गायन करते हुए श्री उद्धव जी ने विस्तार पूर्वक कृष्ण की महिमा का निरूपण किया। मानो ये प्रतिपादन कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके अंग कांति रूप में ही ब्रह्म ज्योति विराजमान, जिस समय वे अपनी शक्तियों का किंचित प्रकाशन करते हैं वही परमात्मा स्वरूप में अंतर्यामी रूप में विराजमान, और जब वे अपनी शक्तियों का ही परिपूर्ण रूप से प्रकाशन करते हैं तो वे ही भगवान रूप में भक्तों को दर्शन देते हुए उनके ऊपर कृपा करते हुए विराजमान होते हैं। जैसे सूर्य एक है, जिस व्यक्ति की दृष्टि अभी उतनी पैनी नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तेजस्व नहीं है, वह सूर्य को देखता है और कहता है सूर्य केवल तेजमय है, उत्तरफ प्रकाश हो रवि की, रवि पुत्र प्रकाश वाला है, वो प्रकाशमय है, वो उसे सूर्य केवल तेज रूप दिखते हैं। जिसकी दृष्टि और ज्यादा तेजस्वी है वो जब सूर्य को देखेंगे तो वह सूर्य के गोले का भी दर्शन करने वाला है, सूर्य के मंडल का भी दर्शन उसे हो जाना है। उसकी अपनी अधिकार संपत्ति और सूर्य भगवान की कृपा, सूर्य भगवान ने उसके ऊपर इतनी कृपा कर रखी है, उसमें भी सामर्थ्य प्रदान कर रखी है, उसके अनुसार सूर्य के वह गोले के स्वरूप का भी दर्शन कर लेता है। परंतु जिसकी दृष्टि और भी ज्यादा सूक्ष्म है वह सूर्य के उस गोलक के भीतर नारायण के पूरे के पूरे रथमंडल का, सूर्य के रथमंडल का दर्शन कर सकता है। कि सूर्य का एक पहिया है, उसमें बाहर आ रहे हैं, उसका 36,000 जोड़े का उसका विस्तार है, उसमें भगवान नारायण स्वयं विराजमान है, उनका साथी है, वो साथी सूर्य की ओर मुख करके विराजमान है, उनके साथ घोड़े हैं, सूर्य का पूरा परिवार है, एक नारायण के स्वरूप में भी श्री सूर्य भगवान का दर्शन कर सकता है। सूर्य एक ही पर किसी को सूर्य दिखता है केवल तेज, किसी को सूर्य दिखता है गोला एक ग्रह, और किसी को सूर्य दिखता है वह साक्षात नारायण के रूप में दिखता है। ऐसे ही वो जो तत्व है, तत्व का तात्पर्य जो नित्य हो और जो आनंदमय, जो सच्चिदानंद होकर के जो पदार्थ विराजमान है, तत्व की पूर्णता जो विशेषता कि उसमें नित्यता होनी चाहिए और उसमें आनंद रूपता होनी चाहिए और आनंद रूपता के प्रकाशन करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। एक शब्द में कहें तो उसे हम कह देंगे सत्य और आनंद रूप होकर के विराजमान, सिद्ध होकर के बाद अपने आप का प्रकाशन करे, सत्स्वरूप होकर के उसका अपना नित्य स्वरूप हो, जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी बाधित न हो, साथ ही साथ में जो आनंद रूप होकर के भी विराजमान हो, ये तीनों स्वरूप और तीनों में विराजमान उसका नाम है सत्ता। और वह तत्व अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। श्री उद्धव जी ने नंद बाबा को श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है यह प्रस्तावित किया और ये कहा, बोले बाबा न माताओं के साथ सत्य हो, अरे ब्रह्म को निर्लेप होकर के सारे बंधुओं से मुक्त होकर के विराजमान उनके कोई माता पिता नहीं है। बाबा तो मुस्करा दिए, मानो कह रहे हैं कि अरे जितना मक्खी निकली जाती है हम साक्षात माता पिता रहे तो रहे, और तू कह रहा है उसके कोई माता पिता नहीं है, पर कौन बात करे कि व्यक्ति कह रहा है तो कहता रहे। श्री उद्धव जी ने ये कहा, बोले बाबा आप अपने धर्म के कारण ऐसा मान बैठे हैं कि वो हमारा पुत्र है, अरे वह आपका ही पुत्र नहीं, वह जितने भी भक्तगण हैं वे भी उसके साथ में ऐसी भावना रखते हैं, वो सबका पुत्र भी है सबका पिता भी है, जो उसके साथ में जैसी भावना रखे वैसा ही वह अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता है। इत्यादि इत्यादि बाबा हंस रहे हैं, मंदिर क्या कर रहे हैं कि उद्धव ने कोई नई बात तो कही नहीं, ये बात मैं सदा से सुनता रहा हूं। वरुण देवता के पास में गया, वरुण देवता ने मेरे बेटा की इसी तरह से पूजा की, इंद्र ने पूजा की, ब्रह्मा ने पूजा की, ठीक है अब मेरा बेटा इस समय मथुरा पहुंच गया, मथुरा में पहुंच करके उसने कंस का वध किया, उसने 10,000 हाथियों का जुड़े फल ऐसे कोरिया पूरे हाथी को भी उसने मार दिया, 3 साल के बराबर जिसकी लंबाई ऐसे शिवजी के ध्वज को उसने मना करते करते भी तोड़ दिया। देखते देखते उसने चारों और मुस्तित जैसे पहलवानों को खेलते खेलते ही पछाड़ लिया, कृष्ण के पाश्रम का दर्शन करके सारे मथुरावासी कृष्ण से कहने लगे, तुम्हारे आप तो साक्षात परमात्मा हो, अब कृष्ण किस चीज को समझाई दे रहा बेटा कि भाई परमात्मा और रत्मा मुझे क्यों कह रहे हो, क्यों मुझे परमात्मा बना रहे हो, अब सब कृष्ण को बुलाते हैं कि भाई आप हमारे यहां पर पधारो, आप हमारे यहां पर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये तो बड़ी आफत आ गई, किसको किसके निमंत्रण को स्वीकार करें और किसके निमंत्रण को स्वीकार न करें, ये तो एक आफत हो गई। जो आचार वही कुछ कहता है तो हमारे हे परमात्मा हे ईश्वर आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप ही ईश्वर होकर के विराजमान हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ होकर के आप विराजमान हो, ईश्वर की वैष्णवों ने जो परिभाषा दी वो परिभाषा यही है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ, ये ईश्वर की परिभाषा है। जो शास्त्र में जो ईश्वर की परिभाषा है वो भिन्न है कि क्लेश विपाक करना गई अपरामस्तः पुरुष विशेषा ईश्वर जो शास्त्र में जो परिभाषा दी गई वो दी गई कि जिसमें क्लेश नहीं हो, कर्म नहीं हो, कर्म के विपाक नहीं हो, कर्म के संस्कार जिसमें न रहे और आगे कर्म करने में जो बाध्य न हो, कर्म से जो बता हुआ न हो, ऐसा जो पुरुष है उसका नाम ईश्वर। क्लेश 5 प्रकार के हैं जो शास्त्र में अज्ञान जो मोह इत्यादि जो 5 प्लेट है उनके युक्त होकर के वो ईश्वर विराजमान नहीं है, तो क्लेश कर्म विपाक आकर इनसे अपरामिष्ट होकर के वो ईश्वर सतरा सतरा विराजमान नहीं है। पर वैष्णवों की जो परिभाषा है वो है कि जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सबको समर्थ है, जो न होने वाला है उसको कर दे, जो होने वाला है उसको टाल दे, पूरी तरह से इसमें सारी सामर्थ्य विराजमान है। अविद्या आत्मता क्लेश कर्म और विपाक इन 5 प्रकार के अज्ञानों से दूर होकर के विराजमान वो ही ईश्वर नहीं है, बल्कि जिसमें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य विराजमान है वह ईश्वर होकर के विराजमान। तो श्री उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सर्व समर्थ है, कृष्ण मंदिर विचार कर रहे हैं बताओ आप सब मुझे ईश्वर ईश्वर का लोग दूसरे करते हैं, तुम्हारे आपने वो काम कर डाला जो कि कभी संभव नहीं था, कंस जैसे को इतने से छोटे से स्वरूप धारण करके आपने मार दिया, आप हमारे यहां पर पठा लो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। श्री कृष्ण ने मन विचार किया कि ये तो एक आपदा है, सब मुझे निमंत्रण देते हैं, इससे बचने का उपाय केवल एक यही है कि मैं भी अभी कहना शुरू कर दूं कि हां मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरा न कोई नाता है न पिता है, न मेरा कोई बंधु है, मेरा तो वो बंधु जो मेरी भक्ति करे। और भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे यहां पर आऊंगा, भक्ति नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार नहीं करूंगा। जिस मन में विचार करके और मेरे बेटा ने उद्धव को ब्रज में भेज दिया, यहां पर उद्धव इस बात को समझ नहीं रहे हैं। कृष्ण ने बहकाने के लिए मथुरा ने जो कहा था कि मैं ईश्वर हूं, मेरा लोग माता है न पिता है, कृष्ण ने तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बात कही थी, निमंत्रण देने वाले जो थे उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बात कही थी। उद्धव बेचारा बुरा भाला, उसने कृष्ण के इन्हीं वचनों को सुन लिया है और इन्हीं वचनों को सुनकर के आज मुझे उद्धव निकाल कर रहा है कि बाबा न माता न पिता सकते हो, उनका कोई माता है न पिता है, अरे उन्होंने लीला के लिए ही ये सारे कार्य किए हैं, आप उनमें ईश्वर भाव धारण करके विराजमान हो। जबकि मैं जानता हूं कि मेरे बेटे ने ये बात कही होगी, वो उन अज्ञानियों से पीछा छुड़ाने के लिए मतलब आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए उसने कह दिया कि मेरा किसी से भी मोह नहीं है, जो मेरी भजन करेगा मैं वो उसको दर्शन दूंगा, उसके ऊपर कृपा करूंगा। उद्धव कन्हैया की मतलब सामने क्या है तो उद्धव ब्रज में जाकर के नंद बाबा को समझाएगा, ब्रजवासियों को समझाएगा, पर ब्रजवासी कोई कृपा नहीं स्वीकार करेंगे नहीं कि कृष्ण ईश्वर है। और फिर ये कहेंगे कि हम तो कृष्ण में ही एकमात्र भक्ति करेंगे। उद्धव आकर के इस समय ये कहेंगे कि देखो मेरे ब्रजवासी ऐसे जो कि सबसे ज्यादा मुझ में भक्ति कर रहे हैं, जिनकी प्रीति ऐश्वर्य के कारण मुझ में नहीं है बल्कि सहज रूप में ही मुझ में विराजमान है, तुम तो मेरे ऐश्वर्यों को देखकर के मुझ में प्रीति करने वाले हो, पर मेरे ब्रजवासी ऐसे जो बिना किसी गुण के कारण किसी उपाधि से रहित होकर के भी मेरे साथ में प्रीति करने के लिए तैयार है, वे मुझे ईश्वर करके नहीं मानते हैं पर प्रेम संबंध के कारण मुझे प्रीति करते हुए विराजमान है। ऐसी स्थिति में ब्रजवासी ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, अब मैं ब्रजवासियों के पास में लौट करके जा रहा हूं। ऐसा विचार करके कृष्ण जल्दी यहां आ जाएंगे ये स्थापित करने के लिए ही उन्होंने उद्धव को यहां पर भेजा, पर उद्धव इस बात को समझ नहीं रहा है। उद्धव कृष्ण के उन्हीं वचनों को केवल दोहरा रहा है, केवल उनका अनुवाद प्राप्त कर रहा है कि कृष्ण ने कहा मेरा कोई माता नहीं है पिता नहीं है, कृष्ण ने यह बात मसावासियों से कही थी कि जो प्रीति करेगा उसके वशीभूत में हूं, और सबसे ज्यादा प्रीति निर्बाधि बिना कारण के कहीं प्रीति है, जहां पर कारण से भी प्रीति हो वो प्रीति शुद्ध प्रीति नहीं है, जहां बिना कारण से प्रीति है कारण प्रीति है वो ही प्रीति शुद्ध है, और ब्रजवासियों की मुझ में जो प्रीति है वही कारण प्रीति है, इसलिए ब्रजवासियों के समान कोई भी नहीं है। अरे मथुरावासियों तुम भी ब्रजवासियों के समान नहीं हो, ऐसा विचार करके कृष्ण मथुरावासियों से कहेंगे कि अब मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा, तुम सब मुझे अपने पास में रोक करके रखना चाहते हो, मुझे त्याग करना नहीं चाहते हो, पर अब मैं लौट करके कृष्ण मैं ब्रजवासियों के पास में अपने नंद बाबा के पास में जा रहा हूं, अब तो मुझे नहीं रोक सकते हो, तो तुमने अपने आप देख लिया कि तुम्हारी प्रीति तो कारण के ऊपर टिकी हुई है, मैंने क्योंकि अपनों का वध किया मैंने तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि की इसलिए तुम मुझसे प्रीति करते हो, और ब्रजवासी बिना स्वार्थ के भी मुझसे निरंतर निरंतर प्रेम करते हैं, जो जिस कारण मुझसे प्रेम करे मैं तो उसके पास में जाऊंगा। इस तरह से बहाना बनाकर एक एक तर्क दे रही है, और उस तर्क के सहारे ब्रजवासियों मथुरावासियों से अपने आप को छूट करके श्री कृष्ण वापस ब्रज आना चाहते हैं, पर उद्धव ये बात समझ नहीं रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि ठीक कृष्ण जो है उनके कोई माता न पिता नहीं है, अब हमको भी ऐसा विचार करना चाहिए कि हम उद्धव को ऐसा दिखाएं कि ठीक है श्री कृष्ण تیس لاکھ یہ کہیں دکھا دیں گے تو کہیں آپ کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو برجواسی اتنا ولمب ہو جانے پر بھی میری یاد کرتے ہوئے براجمان ہے. آج اس منتراؤں کہیں گے وہ دس دلا کے سمجھ کہ مطلب میں کرشن ایشوری یہ پنکھی آئے گی کسی ادھیا میں آنا اس کی بھومکا یہاں پر ہے, وہ جڑا ہوا ہے یہاں پر وہ پنکھی مطلب میں کرشن ایشوری کہ کرشن روپی ایشور میں ہماری بچے لگے. یہ بابا نے اپنے ہرے سے بھی کہا کہ کنہیا کے وطن کا جو کچھ انواد ادھر بھی کسی بات کو جا کر کے جس میں کہیں گے پشچم کرشن لوٹ کر کے یہ بہانہ لے کر کے لوٹ کر کے آئیں گے. بابا اس بات کو سمجھ گئے اور بابا کہہ رہے ہیں کہ ادھر کا تو بھی بارا نا جب پتر آپ کے ایشور ہے ہم اپنے کرم کے کارن سنسار میں بھرمن کرتے ہوئے ڈوب رہے ہیں. ہم یہی پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہماری بدھی کرشن ایشور میں لگے. تب پتا یہ کرشن ایشور بھی کہہ رہے ہیں یہ تو کرشن کے وطن کا کیول انوار مات کر رہے ہیں. لیکن باہر کے کرشن وہاں کہہ سکیں گے کہ میری مجھ سے سب سے زیادہ پریم کرنے والے برجواسی ہیں, اس لیے میں برجواسیوں کی بات میں جان بابا مسکرا دیے ہنسی شدھ کل کرشن میں انہوں نے کرائے ہیں اس پرکار وہ راتری جو تھی وہ راتری بات کرتے کرتے ہی ویسٹ ہو گئی ہے. بابا کرشن کو اپنا پتر کر کے ہی مانتے ہیں, ادھر کرشن کو ایشور کر کے سمجھانا چاہتے ہیں, پرنتو بابا بس اوپر اوپر سے ہاں کر رہے ہیں, بابا سویکار نہیں کر رہے ہیں کہ کرشن ایشور ہے. اپنے من میں انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرشن نے اپنے آپ کو ایشور روپ میں پالت کروانے کے لیے ادھر کو بھیجا ہے ٹھیک ہے. یہ کرشن کی ایک لیلا ماتر ہے متھرا واسیوں کو تکما دینے کی, متھرا واسیوں کو چھوٹ کر کے برج میں پاٹک لوٹ کر کے آنے کے لیے ہی انہوں نے ایک خوب نیچی چلائی ہے, ایک یہ چار چلائی ہے. ایسا مجھے وچار کر کے بابا کیول ہٹ گئے اور بابا نے سوئم ہی پتنگ کو بیچ میں ہی روک دیا. یہ کہتے ہوئے کہ اب کب تک بات کریں گے, یہ بات چل رہی ہے چلنے دو ٹھیک ہے. پراتھ کال ہو گیا پہلے اسنان کرنے والا وہ جب اس میں اسنان کرنے کی چلی خود گائے تین ارے بجائے کا نام دگوت پرشد دھونی اس میں جتنی بھی برجو کا ہے وہ اس سب پر میں کرشن پران وار کا گائن کر رہے ہیں. خود گائے اس سب میں وہ کرشن کے گروں کا گائن کرتی ہے. اچھ سور میں گائن کرنے سے کرشن پہلے بھی پرکٹ ہوئے تھے کبھی, ابھی بھی یہ اچھ سور میں گائن کریں گے تو شری کرشن پرکٹ ہو جائیں گے. ایسا مطلب خیال کر کے یہ مکر سور میں گائن کرتے ہیں. گیت جاتی کی چار وشیشتائیں گیت جاتی کی پہلی وشیشتا ہے اس میں اوستھا ہوتی ہے. گیت کا کی دوسری وشیشتا ہے اس میں کلاتمکتا ہوتی ہے. گیت کا کی تیسری وشیشتا ہے اس میں سنکھتا ہوتی ہے اور گیت کا کی چوتھی وشیشتا ہوتی ہے اس میں سنگیت ہوتا ہے. اس میں مدھرتا گائن کی جو مدھرتا ہے وہ مدھرتا نہیں ہے. یہ چاروں کے چاروں گھر بل گوپتا گھروں کے کوئی گائن میں آگے بڑھا کوئی بھی گیتا تو اتنے چار گھر ہوتے ہیں اور ایک گھر سب سے زیادہ پردھان ہے پانچ میں, اور وہ پانچواں گھر ہے کہ اس میں آتما بھی ویکتی ہوتی ہے. اپنے آپ کے بھاؤں کو پرکٹ کرنے کی سامرتھ آتما میں لینے کی سامرتھ اس میں ہوتی ہے. جس میں اپنے ہرے کے بھاؤ کو پرکٹ نہیں کیا جائے تو وہاں پر جیت کا نہیں بنے گا, وہ کیول ساتھ مات بنے گا, کیول وہاں ورنن کرنے کی پدھتی مات بن جائے گی. ان کا جہاں پر اپنے ہرے کی آتم ابھیوکتی بھی ہوتی ہوئی براجمان ہے, جہاں پر پرم سنگیت بھی براجمان ہے, جہاں پر ہرے کی بھاوتا بھی براجمان ہے, اس بھاوتا کو ویکت کرنے کی جو سامرتھ وہ سامرتھ بھی جہاں پر پرم روپ سے براجمان ہے. کلاتمکتا جس کو کہتے ہیں وہ کلاتمکتا بھی جس پر پرم روپ سے براجمان ہے. ایسے اچھ سور میں مدر مدر سوروں کو یہ پرجو کارن اپنے گراہوں میں اپنے آپ پرکٹ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. جہاں پر ہرے میں گرہ ہوتا ہے پیڑا ہوتی ہے तो वहां कीड़ा अपने आप ही पिघल करके जीव के रूप में प्रकट हो जाया करती है। कोई कभी कहता है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस्ट द टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स। हमारे जो शेली कवि है, शेली प्रसिद्ध कवि रहे, उनकी ही पंक्ति है, हम लोग जानते हैं, हमारे सुंदरतम गीत वे हैं जो हमारे हृदय की वेदना से निकलते हैं। जहां वेदना है वहां गीत अपने आप, वहां वेदना गीत के रूप में अपने आप निकल जाती है। श्री ब्रजभक्तों के हृदय में जो अपूर्व वेदना है वह वेदना वह कंठा ही अपने आप गीत के रूप में प्रकट हो रही है। तो उस गायकी नाम उच्च स्वर में लज्जा का त्याग करके कृष्ण गुणानुवाद का गायन करेंगे। कृष्ण गुणानुवाद के साथ में इनकी अपनी आत्मा भी व्यक्ति अपने हृदय के भाव है वो अपने हृदय के भाव भी प्रकट हो रहे हैं। आनंद मोचनम श्याम सुंदर के रूप माधुरी इनके सामने प्रकट है, क्योंकि मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति। श्री लाल की उस अपूर्व शोभा का दर्शन करते हुए इनके गीत कहां तक निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। बढ़िया के नाम देवी वो जो ब्रज गोपालों का गायन वो आकाश पर व्याप्त हो रहा है, मधुर स्वर में वो गायन सर्व स्वर पर व्याप्त हो रहा है। मस्ती में हम चली जा रही है उस समय भी एक साथ सौर्य सृष्ट इन ब्रज गोपालों के गायन में प्रकट हो रहा है। सौर्य सृष्ट कहते हैं जहां पर नृत्य वाद्य और गायन ये तीनों एक साल में उत्पन्न हो, संगीत के तीनों के उसका नाम है सौर्य। ब्रज गोपालों के श्री हस्त के आभूषण आपकी जो चूड़ी है, चरणों के मुखों कटी की जो पीछे वो न्यारी बज रही है, दही के मसले का स्वर्ण प्रकट हो रहा है, कल जिसमें जो गायन है वो गायन से प्रकट हो रहे हैं, और साथ के बाद में इनके जो आभूषण है वे आभूषण नृत्य भी करते हुए अपने रूप से चले जा रहे हैं। कालों में जो ताकत धारण कर रखे हैं वे ताकत को न्यारे नृत्य कर रहे हैं। तो गायन भी है, वाद्य भी है, और उसके साथ साथ मैपन भी सोहा को प्राप्त हो रहा है। आज ब्रज गोपालों की वो जो कृष्ण गुणानु आपका गायन वो त्रिलोकी को पवित्र करते हुए विराजमान होना है। निर्मल सबसे ताल लग रही है, कहां रिदम चल रही है, कहां पर गोलपुर चल रही है, सबने से निर्मल मिश्रता दही का जो मसला है वो दही का मसला जहां पर ताल देते हुए भी विराजमान है। आज रसिकों के मुख से गाई गई वो जो लीला, वह लीला अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान, वह जैसे संसार के पाप को दूर करने वाली है ऐसे किसी अन्य के द्वारा गाई गई लीला नहीं हो सकती। राशि जब कहते हैं कि कृष्ण लीला गायन तो परम परम मंगल में है ही, परंतु यदि वह महाजनों के द्वारा संगीत होकर के विराजमान हो तो वह अवश्य ही और भी ज्यादा महानीय होकर के विराजमान होगा। स्वयं महाजनों के द्वारा गाई गई लीला का जो आनंदपूर्वक गायन करना उसमें जो स्वाद है वो अपनी निश्चित जनता में स्वाद रहने लगा है। इसलिए महाजन संगीत की अपेक्षा अन्य जन संगठित जो फलता है वह मूल कोशिश ही होती है। तो आज जिनको भी आरोप में जो गायन है वह गायन ही सबसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के बधाई मान तो निरस्त कोई गेर जो काम मनोगलम ये ब्रजगोपालों का गायन है था जो देखाओं के अनंतर को भी दूर करने वाला है। सबसे बाहर श्री कृष्ण राम कृष्ण लीला जैसे अमंगल को दूर करती है वह पाप पाप की बाधना इन दोनों को दूर करके भजन में आने वाली जितनी भी बाधाएं उन बाधाओं को दूर करके जैसे प्रेम को उत्पन्न करती है ऐसी कोई दूसरी वस्तु प्रेम को उत्पन्न करने वाली नहीं है। केवल पाप की मुक्ति नहीं भजन में आने वाली बाधाओं की निवृत्ति और बाधाओं की निवृत्ति ही न करके बल्कि योग्यता का प्रतिपादन करते हुए रस का आकलन कराने में यदि कोई व्यक्ति समर्थ है तो वो ब्रज गोपालों के द्वारा गायन रसिकजनों के नृत्य परिचय के द्वारा किया गया जो कृष्ण का गायन है वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर के जागरण है। तो देखाओ के अनंत को दूर करते हुए केवल मागनम भावना सारा पापनम श्रेय कैलव चंद्र का वितरण विद्यावधु जीवन उस चित्रूपी को दर्पण, उस चित्रूपी दर्पण के ऊपर जो تعلق جمی ہوئی ہے, اس تعلق کو دور کرنے میں جو سبق ہے تو وہ شری ہرنا کرشن لیلا ہی ہے. بھگوت لیلا تو سگڑا سگڑا ہو رہی ہے, وہاں تو مٹی بنا ہے, ہم کو نہیں دکھ رہی ہے. کیوں؟ بولے ہماری آنکھوں کے اوپر رپورٹ پڑی ہوئی. جیسے نام کا آج پہ ڈر دیا جائے گا تو چپ روپی درپن کے اوپر جو میل جمع ہوا ہے جو دھول جمی ہوئی ہے وہ دھول کچھ جائے گا. کوئی لیلا پٹن ہو کی بات نہیں ہے, لیلا تو پہلے سے بھی آئی ہوئی ہے. Thank you.